2 अगस्त जलंधर इच्छाओं का पूरी होना या नहीं होना दोनों दुखदायक धर्म चर्चा का नहीं चर्या का विषय है। जनाचार्य श्री ज्ञानचंद्र जी सा 2 अगस्त 2022 को जैन स्थानक गुडमंडी में जनाचार्य श्री ज्ञानचंद्र जी सा ने फरमाया कि इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इच्छा पूरी होना या न होना दोनों ही दुखदायक है। वैसे भी इच्छा आकाश के समान बतलाई है, इसलिए इच्छा के पीछे भागने वाला कभी सुख नहीं पा सकता। प्राचीन युग में पति को पत्नी और पत्नी को पति दिखाए नहीं जाते थे, माँ बाप ही देखकर निर्णय दे देते थे। सुहागरात के समय ही घूंघट हटाने की परंपरा रही है। उस समय जो भी मिल जाता वो भगवान की कृपा मानकर अपना लिया जाता था। उस जोड़े में कभी झगड़ा नहींवत होते थे, जबकि आज सब कुछ देखकर घूमकर बातें करके शादी की जाती है फिर भी तलाक हो जाते हैं। आकाश लोक में भी होता है, अलोक में भी, यानी कि अनंतानंद जिसका अंत नहीं, वो इच्छा पूरी करके भी सुख पा नहीं सकता है, क्योंकि लोभ सारे सद्गुणों का नाश कर देता है। आपका बाप लोभ बतलाया गया है। आज आदमी दूसरे के कागज में अपना इच्छित रंग भरता है। पति चाहता है कि पत्नी उसके अनुसार चले और पत्नी चाहती है कि पति उसकी बात माने। यही गड़बड़ है। हमें किसी को बात न मनाकर स्वयं के जीवन में स्वयं का रंग भरना सीखें। भगवान महावीर का यह निर्देश रहा है कि अपनी बात अच्छे से रखो, उसके बाद निर्णय सामने वाले पर छोड़ दो। हा सुहन देवानुपिया, जैसा सुख हो वैसा करो। उत्तराध्ययन सूत्र में आया है, तेने जहा संधि दहिए सकमुना कीचे पावकारी एवं प्या पेच यह चलोए। दान कम मान आना मौखत थी, संधि मुख में गया स्तेन यानी की चोर। अपने ही पापकारी कर्मों से दुख पाता है। इसी प्रकार प्रजा यानी की दुनिया के लोग अपने ही कर्मों से इस भव भी और परभव भी दुख पाते हैं। अतः कर्मों को करते वक्त सोचकर चलना जरूरी है। जिस कार्यों से कर्म बंधते हैं उन्हीं कार्यों से कर्म टूट भी सकते हैं। आचारांग सूत्र में आया है, जे आस्वाते परिस्वा, जो आश्रव यानी कर्म बंद के कारण है वही आपकी सोच सही होने पर कर्म रोकने और कर्म तोड़ने के कारण बन सकते हैं। इसीलिए आश्रव के 20 तो संवर के भी 20 भेद बतलायन है। पति पत्नी दोनों एक साथ घूमते हैं, होटल में जाते हैं, पिक्चर में जाते हैं, पाप के कार्य करते हैं, तो ऐसे पापकारी सामूहिक कार्यों से कर्म भोगना भी एक साथ पड़ता है। हमारा कहना है कि प्रतिदिन न आ सको तो कोई बात नहीं है, लेकिन सप्ताह में एक बार तो सपरिवार किसी चरित्रात्मा संत के दर्शन करके विधिवत वंदन करके सपरिवार मंगलिक अवश्य सुनना चाहिए, ताकि पुण्य का अर्जन और कर्म निर्जरा भी साथ ही हो। समुद्र मंथन करते हैं तो जहर भी निकलता है, तो उसी समुद्र से अमृत भी निकलता है। पानी आग लगा भी सकता है तो बुझा भी सकता है। इसी प्रकार हम अपने कार्यों से पुण्य और पाप दोनों कर सकते हैं। भगवान महावीर ने 4 समान बतलाए हैं। प्रथम रतन प्रभा नरक का सीमांतक नरकावास, दूसरा मनुष्य क्षेत्र जम्बू द्वीप, घात की खंड और अर्थ पुष्करवर द्वीप, यह 2.5 द्वीप है। इसी तरह सोधर्म देवलोक, प्रथम प्रष्टट उदुक विमान और चौथा इशत पागभरा पृथ्वी यानी की सिद्ध शिला, ये चारों एक समान 45 लाख योजन के हैं। हमारा यह मनुष्य क्षेत्र है, इसके बराबर बराबर दुनिया में 3 स्थान और है। सिद्ध क्षेत्र भी मनुष्य क्षेत्र उतना ही है। इससे स्पष्ट है मोक्ष, जब भी जीव जाता है तो मनुष्य क्षेत्र से ही जाता है, अन्य किसी जगह से मोक्ष नहीं जा सकता। संत सती जन साधना के द्वारा मोक्ष जाने की स्थिति बनाते हैं। गृहस्थों को चाहिए कि उनके सामने सांसारिक बातें न करें। उन्हें गृहस्थ दुनिया की, मोबाइल की, टीवी, घूमने फिरने की बातें बताकर संसार की तरफ आकर्षण न बढ़ाएं, बल्कि उनके त्याग तप संयम के गुणगान गाकर अधिक से अधिक सम्मान करके उनकी संयम में रुचि बढ़े, वो प्रयास होना चाहिए। उन्हें सम्मान कर साधना की बातें बताएं। इतिहास में एक उदाहरण आता है, क्षुल्लक नाम का एक राजकुमार था। संस्कारवश बाल्यकाल में ही वो अपनी माता साध्वी यशोभद्रा के पास दीक्षा लेकर ज्ञानार्जन में जुट गया। जब वो युवक बड़ा हुआ तो हृदय में संसार के भोग की तरंग उठने लगी। दबाने पर भी यह तरंग जब दब न सकी तब एक दिन वह अपनी माँ से संन्यास छोड़कर पुनः संसार में जाने की अनुमति मांगने लगा। माँ ने बहुत समझाया पर पुत्र का मन नहीं बदला। आखिर मोह का दबाव डालकर माँ ने कहा, पुत्र कम से कम 12 वर्ष तक तू मेरे पास और रहकर अध्ययन कर ले, फिर जैसा तेरा मन हो वैसा करना। माँ की ममता ने पुत्र को 12 वर्ष के लिए बांध लिया। अब माता प्रतिदिन वैराग्य और ज्ञान की बातें सुनाती पर क्षुल्क मुनि के मन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसी तरह 12 वर्ष पूरे हुए, उसने माता से पुनः संसार में जाने की अनुमति मांगी। स्नेह के कारण माँ की आंखें भीग गई। उसने कहा, पुत्र मेरी गुरुनी के पास जाकर तुम आज्ञा लो, यदि वे आज्ञा दे दें तो तुम संसार में चले जाना। क्षुल्लक मुनि गुरुनी के पास आया और घर जाने की आज्ञा मांगी। गुरुनी ने कहा, वत्स पहले 12 वर्ष तक तुम मेरे पास रहकर धर्म उपदेश सुनो, उसके बाद देखा जाएगा। का इधर क्षुल्लक मुनि गुरुनी की बात को भी न टाल, इधर विकारों की उछाल मन से मिटी नहीं थी, पर किसी न किसी तरह उसे दबाकर वो 12 वर्ष तक गुरुनी की देखरेख में अध्ययन करता रहा। 12 वर्ष पूरे होते ही उसने गुरुनी से विदा मांगी। गुरुनी ने कहा, पुत्र तू जा सकता है किंतु अपने गुरु की आज्ञा लेकर। क्षुल्लक गुरु के पास गया तो गुरु ने भी 12 वर्ष के लिए रोक लिया। मन को महसूस कर क्षुल्लक ने फिर 12 वर्ष बिताए। 12 वर्ष पूरे होने पर उसने गुरु से संसार में जाने की अनुमति मांगी। गुरु ने कहा, क्षुल्लक आचार्य की अनुमति लिए बिना संसार में मत जाओ। क्षुल्लक मुनि आचार्य भगवान के पास आया। आचार्य ने भी उसे 12 वर्ष तक अपना उपदेश सुनने के लिए रोक लिया। क्षुल्लक मुनि मन ही मन खींच उठा, इतने वर्ष बीत गए, धर्म सुनते सुनते अब और क्या बाकी रह गया है। किंतु फिर भी वो आचार्य की बात टाल नहीं सका। इस तरह क्षुल्लक मुनि ने 48 वर्ष तक अपने मन की इच्छा और भावना को दबाया। अब मानसिक चंचलता असह्य हो रही थी, वो संसार में जाकर सांसारिक सुखों का अनुभव करने के लिए तड़प रहा था। इस बार 12 वर्ष पूरे होते ही उसने आचार्य की अनुमति की प्रतीक्षा नहीं की। समय पूरा होते ही वो चुपचाप संसार की यात्रा के लिए चल पड़ा। क्षुल्लक मुनि चलता चलता साकेतपुर पहुंचा। नगर में आते आते संध्या हो गई थी। नगर के बाहर उद्यान में एक सुंदर नाटक हो रहा था। हजारों लोग तन्मयता के साथ खड़े नाटक देख रहे थे। नृत्य और गायन का अद्भुत समा बधा था। क्षुल्लक मुनि के पांव वहीं रुक गए, वो भी एक ओर खड़ा होकर नृत्य देखने में लीन हो गया। आकाश में निर्मल चांदनी खिल रही थी, शीतल और मंद पवन बह रही थी। नर्तकी के मधुर स्वर पायल की झंकारों के साथ दिग्दिगंत को मुखरित कर रहे थे। उसका नृत्य दर्शकों को अपनी मादकता के वेगवान प्रवाह में बहाए जा रहा था। रात के 3 पहर बीतने को आए पर लोगों पर जादू छाया हुआ था। किसी को पता भी नहीं चला कि इतना लंबा समय कब और कैसे बीत गया। लगातार नृत्य करते हुए नर्तकी के अंग अंग श्रम से शिथिल हो गए, उसकी आंखें भारी हो गई, नींद की हल्की झपकी आंखों में उतरने लगी। इतना लंबा समय होने पर भी किसी ने कुछ भी इनाम नहीं दिया था। राजा भी उस नृत्य सभा में मौजूद थे। जब तक राजा कुछ न दे तब तक प्रजा कैसे दे सकती थी। सभी नर्तकी की प्रशंसा कर रहे थे और राजा के इनाम देने की प्रतीक्षा कर रहे थे। आगे की क्या स्थिति होती है, उन्हें इनाम मिलता है या नहीं। प्रवचन का समय आ चुका है तो कल यथानुकूल स्थिति में अगला प्रसंग बताया जा सकता है। बड़ा आदमी अगर दान देता है तो छोटे भी अनुसरण करने लगते हैं, लेकिन बड़े अच्छा काम करें या न करें हमें अच्छा करते रहना चाहिए। हमें संतों की सेवा करनी है या दान देना है, वो सब हमारी कमाई है। ये अच्छे काम करके दूसरे पर एहसान मत कीजिए, बल्कि अपनी सेवाओं को ओपन न करके गुप्त रखिए। कई लोगों की आदत होती है काम तो करते हैं, काम बताते हैं ज्यादा, मैंने यह किया, मैंने दवा ला कर दी है, मैंने अमुक संतों का उपचार कराया है, मैंने तेला किया है, ठाई की है, यह सब कहना उच्छापन है। अपने अच्छे कार्यों को बचा कर रखिए, तभी वो अधिक से अधिक फलवान होंगे, क्योंकि धर्म चर्चा का विषय नहीं चर्या का विषय है, आचरण का विषय है। श्री अरिहंत मार्गी जैन महासंघ, सदा जयवंत हों।